दिन भर 12 अगस्त रविवार सभी श्रोताओं को आदर्श राठौर का नमस्कार। सूरज के बेहद करीब जाकर जानकारियां जुटाने के इरादे से नासा ने सफलता से लॉन्च किया पार्कर सोलर प्रोब।
यहाँ पे ये प्रोब जाएगा, वहाँ पर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, 700-750 पे तो स्टील भी मेल्ट हो जाता है।
भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे केरल में मौसम ने दी राहत, मगर अभी भी हालात बेहतर नहीं। सुनाएंगे सिलिकोसिस से जूझ रहे राजस्थान के हजारों मजदूरों का दर्द।
इसमें 24 साल से लेके 54 साल तक के हैं और ये लगभग 50 तो पूरा भी नहीं कर पाते हैं, 24-25 के मर चुके हैं, ऐसे खूब सारे केस हैं।
जानेंगे केरल में कैसे महिलाओं ने जीता बैठने का अधिकार, लेकिन पहले विश्व समाचार।
विश्व समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य के नजदीक सैटेलाइट भेजने का मिशन लॉन्च कर दिया है। $1.5 अरब की लागत वाले द पार्कर सोलर प्रोब को केप कैनवेलस से अंतरिक्ष में रवाना किया गया। भेजी गई सैटेलाइट सूर्य के बाहरी वातावरण तक पहुंचने में सक्षम है, जो सूर्य के केंद्र से 60 लाख किलोमीटर दूर उड़ान भरेगी। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि 7 साल चलने वाले इस अभियान से सूर्य के बारे में अधिक जानकारियां मिल सकेंगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कैस्पियन सागर क्षेत्र के कानूनी दर्जे को लेकर हुए समझौते को मील का पत्थर बताया है। चारों ओर धरती से घिरे इस समुद्र को लेकर हुए समझौते में रूस के अलावा इससे लगे 4 अन्य देश ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान शामिल हैं। 2 दशकों की कोशिशों के बाद ये समझौता हुआ है, जिसके आधार पर गैस और तेल से समृद्ध समुद्र तल को बांटा जाएगा। इस समझौते के तहत इस क्षेत्र के अलावा किसी और देश की सेना की मौजूदगी पर रोक लगा दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अहम कदम बताया है। समझौते के बाद पुतिन ने कहा, आज का दिन बिना किसी अतिशयोक्ति के हम सभी देशों के लिए एक प्रमुख महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमने कैस्पियन सागर के कानूनी दर्जे को लेकर समझौता कर लिया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें हमारे कैस्पियन सागर की साझा समृद्धि के इस्तेमाल और संरक्षण को लेकर नियम बनाए गए हैं। अमेरिका में कट्टरपंथी समूह और गोरे नस्लवादी आज वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर रैली करेंगे। 1 साल पहले वर्जीनिया के शर्लॉट्सविले में इन समूहों की रैली में व्यापक हिंसा हुई थी। आज की रैली के आयोजकों ने इसे गोरे नागरिकों के अधिकार रैली कहा है और समर्थकों से अमरीकी झंडे और गोरे नस्लवादियों के कन्फेडरेट झंडे लाने के लिए कहा है। वहीं वामपंथी झुकाव वाले संगठन आंसर कोएलिशन का कहना है कि वो इसके जवाब में रैली करेंगे। शनिवार को एक ट्वीट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो सभी तरह के नस्लवाद की आलोचना करते हैं। इथियोपिया के व्यापक सोमाली भाषी क्षेत्र में स्वायत्तता के लिए 2 दशकों से लड़ रहे एक विद्रोही गुट ने एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा की है। द ओगाडोन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने कहा है कि नए राष्ट्रपति आबी अहमद की शांति की अपील के बाद वो शांतिपूर्ण वार्ता से इस संघर्ष का हल हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2007 में किए एक हमले में इस संगठन में चीन संचालित एक तेल संयंत्र पर हमला कर 70 कर्मचारियों की हत्या कर दी थी। इथियोपिया की संसद ने हाल ही में इस संगठन को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाया था। सीरिया से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक विद्रोही के नियंत्रण वाले इदलिब प्रांत में हुए एक धमाके में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं। इस धमाके में एक इमारत पूरी तरह धराशायी हो गई। सऊदी अरब से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक एक प्रमुख कट्टरवादी इस्लामी धर्मगुरु शेख नासर उल अमर को हिरासत में लिया गया है। सऊदी अरब के एक मानवाधिकार समूह के मुताबिक उमर को बीते सप्ताह मक्का में हिरासत में लिया गया। ट्विटर पर 60 लाख से अधिक समर्थकों वाले उमर इस्लाम की कट्टरवादी विचारधारा के समर्थक हैं और खासा प्रभाव रखते हैं। सऊदी अरब में हाल के महीनों में कई धर्मगुरुओं को हिरासत में लिया गया है। नए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि वो अपने देश को उदारवादी इस्लाम की ओर ले जाना चाहते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो का कहना है कि वो बीते सप्ताह उनकी जान लेने के इरादे से हुए हमले की जांच के लिए अमरीकी संघीय जांच एजेंसी FBI के जांचकर्ताओं को अपने देश आने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर अमरीका फ्लोरिडा में स्थित आतंकी समूहों की जांच के लिए तैयार होता है तो वो FBI को अपने देश आने देंगे। फ्लोरिडा में वेनेजुएला से आए लोगों की बड़ी आबादी रहती है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा ने $1,50,00,000,000 की लागत वाले एक उपग्रह को सूरज के बेहद करीब भेजने वाले रॉकेट को सफलता से लॉन्च कर दिया। इस अभियान का नाम रखा गया है पार्कर सोलर प्रोब। पूरी दुनिया की निगाहें इस लॉन्च पर टिकी हुई थी क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट पहली बार सूरज के सबसे करीब जाएगा। कल कुछ गड़बड़ियों के कारण इसे लॉन्च नहीं किया जा सका था, मगर आज इसमें कामयाबी मिल गई। ज्यादा जानकारी के लिए बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से।
सूर्य के बाहरी वातावरण के बारे में जानकारी जुटाने के इरादे से तैयार नासा के पार्कर सोलर प्रोब रॉकेट को फ्लोरिडा में केप कनेवरल से लॉन्च किया गया।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
इस अभियान के जरिए उस सोलर विंड के बारे में और जानने की कोशिश की जाएगी जो हमारी पृथ्वी पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इस काम के लिए पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतने करीब जाएगा जितना इससे पहले कोई और अंतरिक्ष यान नहीं गया है। बावजूद इसके ये सूरज से 60 लाख किलोमीटर दूर तक ही पहुँच पाएगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। सूरज की प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए इस अंतरिक्ष यान के चारों ओर एक खास कवच लगा है। ये कवच 1300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकता है। 11.5 सेंटीमीटर मोटा ये कवच धरती पर पड़ने वाली रेडिएशन से 500 गुना ज्यादा रेडिएशन झेल सकता है। पार्कर सोलर प्रोब और भी कई मायनों में खास है। ये मानव इतिहास की सबसे तेज चलने वाली वस्तु है। ये स्पेसक्राफ्ट 6,70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से सूरज की ओर बढ़ेगा। ये पहली बार है जब किसी स्पेसक्राफ्ट का नाम किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। इस स्पेसक्राफ्ट को अपना नाम देने वाले व्यक्ति हैं यूजीन पार्कर। 60 साल पहले 91 साल के इस खगोलविद ने सूर्य से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स यानी सोलर विंड के बारे में दुनिया को बताया था। उन्होंने कहा कि वो अभी से ही सोच रहे हैं कि प्रोब क्या जानकारी भेजेगा।
लॉन्च के बाद मैं अब सोचने लगा हूं कि अगले 5, 6 या 7 साल में क्या क्या सामने आएगा जो मुझे अभी पता नहीं है। मैं इंतजार कर रहा हूं जानकारी का। एक्सपर्ट्स अब व्यस्त हो सकते हैं क्योंकि बहुत जानकारी सामने आएगी। जब आप सामने कोई चीज देख रहे होते हैं तो वो बहुत प्रभावशाली लगता है। ये कुछ कुछ ताजमहल को सामने से देखने जैसा था। आपने ताजमहल की तस्वीरें देखी होती हैं, लेकिन जब आप भारत जाकर देखते हो तो आपको महसूस होगा कि कोई वीडियो या पेंटिंग उस खूबसूरती को नहीं दिखा पाई।
खगोलविद यूजीन पार्कर के शब्द। इस प्रोब यानी रोबोटिक अंतरिक्ष यान को ले जाने वाला रॉकेट भारतीय समय के अनुसार आज दोपहर 1:01 को लॉन्च किया गया। इसे कल भी लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। नासा के लॉन्च मैनेजर ओमर बेज ने बताया कि आज सब सुचारू रूप से हो गया।
The count went splendid today. Very boring, which is awesome for this kind of launch. You know, we had a tough day yesterday.
कल हमारे लिए एक मुश्किल दिन था। हम तय समय में अपना काम पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा था। काम में कोई दिक्कतें नहीं आईं और मौसम ने भी हमारा साथ दिया।
लॉन्च मैनेजर ओमर बेज के शब्द। लॉन्च के घंटे बाद नासा ने पुष्टि की कि स्पेसक्राफ्ट सफलता से रॉकेट से अलग हो गया है और प्रोब स्पेस में जा चुका है। अगले 6 हफ्तों में ये शुक्र ग्रह तक पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद अगले 6 हफ्तों में सूर्य के नजदीक। लॉन्च देखने वालों में यूनाइटेड लॉन्च लाइंस की एलिजा मैकबेथ भी थी। लॉन्च को लेकर वे काफी उत्साहित दिखी।
Oh my goodness, that was a beautiful launch. Just the sound and everything. Oh,
बहुत ही सुंदर लॉन्च था। अब तक तो सब सही जा रहा है। मुझे रॉकेट पर काम करने का मौका मिला और ऐसे मिशन बहुत खास होते हैं। एक ऐसी चीज के लिए काम करना जो दुनिया को प्रभावित करेगी, ये सच में मेरे लिए अद्भुत है।
ये थे एलिसा मैकबेथ के शब्द। अगले 7 साल में पार्कर प्रोब सूर्य के 24 चक्कर लगाएगा। इससे सूर्य के आसपास के उस घेरे के बारे में जानने में मदद मिलेगी जिसे कोरोना कहते हैं। ये हिस्सा सूर्य की सतह से कई गुना गर्म होता है। धरती को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियां जैसे कि सोलर विंड इसी परिमंडल से निकलती हैं।
जैसा कि आपने सुना कि इस अभियान के तहत सोलर विंड के बारे में और समझने की कोशिश की जाएगी। आखिर ये सोलर विंड क्या होती है और इसके बारे में जानकारी जुटाना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये जानने के लिए कुछ देर पहले मैंने विज्ञान मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला से बात की।
जितना ज्यादा हम सूर्य को समझेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए ये समझना आसान होगा कि किस तरह से यूनिवर्स उत्पन्न हुआ और किस तरह से लाइफ हमारे धरती पे कामयाबी से पैदा हुई और बढ़ी है। तो ये तो एक बिल्कुल जेनेसिस के बारे में समझने की बात है। और ये सोलर पार्क का प्रोब जो है, ये आज तक जितने भी सूर्य की ओर मिशन हुए हैं उसमें से सूर्य के पास सबसे पास जाने वाला मिशन होगा। यहाँ पे ये प्रोब जाएगा, वहां पर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, 700 750 पे तो स्टील भी मेल्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोब को किस सटीकता से बनाया गया है। तो ये सोलर विंड को रास्ते में स्टडी करेगा, सोलर स्टॉर्म्स का स्टडी करेगा और अंततः ये बताएगा कि किस तरह से हमें सूरज जो अक्सर जबरदस्त सोलर स्टॉर्म्स भेजता है धरती की ओर, उससे कैसे अपने सिस्टम्स को बचाया जा सके।
सोलर विंड और सोलर स्टॉर्म्स जो आते हैं उनको समझने में मदद मिलेगी, लेकिन कैसे पृथ्वी कैसे प्रभावित होती है इससे?
सूरज में बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं तो उसमें से ढेर सारे चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, और ये सब जब निकलते हैं इतना बड़ा धमाका होता है कि वो अगर धरती की तरफ रुक करा हुआ सोलर स्टॉर्म हो तो वो अर्थ की तरफ आ जाते हैं और हमारे ढेर सारे सैटेलाइट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, इन सब पे नुकसान हो सकता है। इसी कारण ये जो सोलर विंड है इसको समझने की बहुत सख्त जरूरत है।
क्या भारत भी कोई इस तरह की तैयारी कर रहा है?
भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भी सूरज की ओर रुख कर रही है और उसका एक मिशन है आदित्य L1 मिशन, जिसकी उम्मीद है कि अगले साल भर में वो उड़ान भरेगा और खासकर सूरज को स्टडी करने में मदद करेगा। ये सोलर पार्कर मिशन तो बहुत पास जा रहा है सूरज के, लेकिन ये जो आदित्य मिशन है ये पूरे वक्त सूरज को देखेगा और डेटा भेजेगा भारतीय वैज्ञानिकों को और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को। जिस तरह से सूरज को नासा स्टडी कर रहा है उसी तरह से भारतीय वैज्ञानिक भी सूरज को स्टडी करने की कोशिश करेंगे।
वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला बता रहे थे कि भारत भी इस तरह का एक अभियान शुरू करने जा रहा है। अब रुख करते हैं भारत का। भारी बारिश के कारण मुश्किलों से जूझ रहे दक्षिणी राज्य केरल में बारिश से राहत तो मिली है आज, लेकिन रेड अलर्ट अभी तक वापस नहीं लिया गया है। राज्य में 37 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ अभी भी लापता हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें राज्य को 8,316 करोड़ रुपये का नुकसान होने का शुरुआती आकलन उन्होंने किया है इसमें। इस बीच केरल में राहत और बचाव कार्य में जुटे NDRF के एक कांस्टेबल की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है, मगर क्यों? सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
केरला में आज भले ही बारिश ना होने के कारण राहत मिली है, मगर ये बात साफ हो गई है कि राज्य में रेड अलर्ट कम से कम अभी मंगलवार तक जारी रहेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर एक युवक की तस्वीर वायरल हो गई है जिसमें वो छोटे बच्चे को लेकर एक पुल पर भाग रहा है। वो युवक NDRF का एक कांस्टेबल है जो पुल के एक तरफ से दूसरे तरफ भागकर बच्चे को एक आदमी से लेता है और फिर वापस भाग आता है। इसके कुछ ही देर बाद वो पुल इडुकी चिरुतुनी के बांध से छोड़े गए पानी में बह गया। BBC तमिल सेवा की प्रमिला कनन ने कन्हैया कुमार नाम के इस कांस्टेबल के सहयोगी कृपाल सिंह से बात की।
उस टाइम जब यहाँ पे थे तो उस टाइम बहुत ज्यादा क्राउड था, यहाँ पे चारों तरफ से लोग यहाँ पे झुके हुए थे और उसके बाद हम लोगों को क्राउड को साइड में कर रहे थे क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा चांसेस था, क्योंकि प्रेशर था जो पानी का वो बहुत हैवी था। उसके बाद जो यहाँ पे जो पुल बना हुआ है उस पुल के ऊपर क्रॉस होना एक तरह से असंभव लग रहा था हमको भी, पर हम लोगों ने हिम्मत किया और उस पुल को पार करते हुए उस बच्चे का और उन दो आदमियों का रेस्क्यू किया।
कन्हैया कुमार पिछले 6 साल से NDRF में काम कर रहे हैं। जब हालात कुछ बेहतर होंगे इस तरह की कर्तव्य पालन करने वाली कहानियां केरला के दूसरे इलाकों से भी सुनने को मिलेंगी। आज की खुशी की खबर इतनी है कि बारिश नहीं हुई, लेकिन केरला के अपर मुख्य सचिव PH कुरियन ने BBC को बताया,
करंट सिचुएशन
आज बारिश नहीं आई और इसके वजह से बहुत राहत मिली है, लेकिन हम 14 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी रखेंगे क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जोरों से बारिश हो सकती है। राहत केंद्रों में करीब 40,000 लोग हैं और आज बारिश नहीं आने की वजह से बहुत सारे लोग वापस अपने घर निकल गए हैं। अभी तक करीब 47 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग लापता हैं। ये थे पीएच कुरियन के शब्द। तो क्या अभी भी बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, खासकर जब बारिश नहीं हो रही है? हमने यह सवाल जल संसाधन निगरानी सेल के विशेष अधिकारी जेम्स विल्सन से पूछा। उन्होंने कहा, हाँ, जलाशयों से इतना ही पानी छोड़ा जा रहा है ताकि अगर बहुत बारिश पड़ी तो बांध में पानी खतरे के स्तर से कम हो। मतलब ये कि अगर जोरों से बारिश हुई तो हमें ज्यादा पानी छोड़ने की नौबत ना आए। ये थे जेम्स विल्सन के शब्द। अगर अभी बारिश ना भी हो तब भी राहत और पुनर्वास में समय लग सकता है। ऐसे हालात में हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि स्वतंत्र दिवस तक परिस्थिति और गंभीर ना हो जाए। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर हजारों मजदूर पत्थरों की घिसाई करते करते लाइलाज सिलिकोसिस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। बहुत से लोगों की इस बीमारी के कारण मौत हो चुकी है और कुछ जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार पत्थरों के कण और धूल के सांस के साथ फेफड़ों में जाने से ये बीमारी होती है। हाल ही में 1000 के करीब सिलिकोसिस पीड़ितों ने जयपुर में प्रदर्शन किया और सरकार से मदद की गुहार की। इनमें मजदूरों की विधवाएं भी शामिल थीं। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
2 साल हो गए, मजदूर भी नहीं जाने, बहुत मुश्किल हो गई। मजदूरी करती, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ के जाती तो फिर शाम को जल्दी नहीं आती रोटी। पहले तो वे रहते तो दान की जा सकती। सरकार ने बोला भी 4 लाख मिले भी कौन ना, नहीं 1 लाख मिले। और अजमेर जाओ तो गए, भिलवाड़ा जाओ, भिलवाड़ा जाओ तो गए अजमेर, अजमेर लगे मसूद जाओ।
चेहरे पर मुर्दनी और गले में बीमारी की तख्ती लटकाए हुए जयपुर में जमा हुए, लेकिन उनके बीमार फेफड़ों में इतना दम भी नहीं था कि अपनी मांगों पर नारे बुलंद कर सके। सिरोही जिले में पिंडवाड़ा का गणेश मेघवाल कहता है, उन्हें पता है ये जानलेवा बीमारी है, पर रोजगार का दूसरा कोई साधन भी तो नहीं है।
दवाइयों के लिए पैसे नहीं, 1 लाख रुपया था वो 12 महीने 1.5 साल में खर्च हो गया पूरे दवाइयों में। प्राइवेट दवा लेता था, अब मैं सरकारी दवा लेता हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें जब तक जिंदा है जब तक तुम्हें दवाई लेनी है। हमारे पिंडवाड़ा की मेन आजीविका ही यही है, पत्थर कढ़ाई। लगभग 15 से 18 हज़ार वर्कर सीधे सीधे पत्थर कढ़ाई से और पत्थर पॉलिशिंग से जुड़े हुए। तो मैं बीमार होने के बाद में मेरी बहन और मेरी मिसेज जो पत्थर पॉलिशिंग का काम करती है, हम जिसको गढ़ते हैं वो उसको पॉलिशिंग करती है। आजीविका ही वही है सीधे सीधे। पापा ने भी यही काम किया था, तो एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, इसी तरह मैं पत्थर कढ़ाई करने वाला का बेटा पत्थर कढ़ाई।
पत्थर खदानों वाले इलाकों में गांव-गांव यही कहानी है। भीलवाड़ा की मनभर कहती है, पति का बहुत इलाज कराया लेकिन वे हमें छोड़कर चले गए।
इलाज भी कराया, आदमी को इलाज नहीं हुआ। 5 साल तक बीमार रही और खाना में काम कर बीमारी लागी। चल बस साल भर हो गई। 1 लाख रुपए मिले थे, बाकी के 3 लाख मिलने की बात है वो नहीं मिल रही। 6 लड़की है, 1 लड़का है, ये सब खानों पी जाते हैं काम पे, और कोई धंधा ही नहीं। तो जलम से वही काम सीखा है तो फिर क्या करें। हमारे गाँव में 20-25 आदमी चल बस है, ऐसे विधवा ही विधवा औरते हैं।
वे हाथ जब पत्थर तराशते तो बेजान पत्थर बोलने लगते। देश के अनेक मंदिर और इमारतों में उन हाथों के तराशे पत्थर लगे हैं। अब ये मजदूर मंदिर और इबादत गाह में दुआ के लिए जाते हैं तो किसी अस्पताल की इमारत में दवा के लिए। सरकार ऐसे बीमार को 1 लाख रुपया और मरने पर 3 लाख रुपये की मदद देती है, लेकिन मजदूर किसान शक्ति संगठन के शंकर सिंह कहते हैं यह मदद बहुत छोटी है।
15,000 प्रमाण पत्र लेके खड़े हैं कि हम बीमार हैं और हमारे पास ये वो सर्टिफिकेट है कि हम बीमार हैं। इसमें 24 साल से लेके 54 साल तक के हैं और ये लगभग 50 तो पूरा भी नहीं कर पाते हैं। 24-25 के मर चुके हैं, ऐसे खूब सारे केस हैं। युवा एकदम युवा मरे। ये देखो आपके सामने खड़ा है, जहाँ ये माइंस है पत्थर की उसमें है। पत्थर की घिसाई क्योंकि ड्राई होती है, ब्रश चलाते हैं तो इनको जल्दी हो जाता है। मतलब आपने 1 साल काम किया उसके बाद गए काम से।
ये मजदूर ऐसे वक्त जयपुर में जमा हुए जब प्रमुख सियासी पार्टियां चुनाव प्रचार में मशगूल है, लेकिन कोई भी नेता उनकी फरियाद सुनने नहीं आया। भीलवाड़ा की मुमताज ने इस बीमारी में अपना शौहर खोया है। पूछा तो मुमताज का दामन आंसुओं से भीग गया। उन हाथों में हुनर था, वे हाथ कभी छेनी हथौड़ा थामे शिल्प कला की नायाब इमारतें बनाते थे। अब उन हाथों में या तो दवा की पर्ची है या फरियाद का कागज, पर क्या कोई फरियाद सुनेगा भी? नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
भारत में महिलाओं ने एक अनोखा अधिकार जीता है, राइट टू सिट। अभी औरतों को तो नहीं, मतलब सभी औरतों को तो नहीं, लेकिन दक्षिणी राज्य केरल में दुकानों में काम करने वाली सेल्स विमिन अब दिन के दौरान कुछ देर बैठ सकेंगी। بی بی سی संवाददाता دیویا آرے کیرل پہنچی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ مولبھوت ادھیکار عورتوں کو آخر کیوں نہیں مل رہا تھا.
دلی اور اتر بھارت کے کئی اور شہروں سے بالکل الگ کیرل کے کیلیکٹ میں کسی دکان میں جائیں تو زیادہ تر سامان دکھانے کے لیے ایک عورت ہی سامنے آتی ہے. میں آج دن بھر کئی شو رومس میں گئی اور ہمیشہ چٹک رنگ کی بڑھیا سی ساڑی پہنے مسکان کے ساتھ عورت ہی مجھے ملی. لیکن شو روم بڑا ہو یا چھوٹا, بھیڑ کم ہو یا زیادہ, یہ سبھی عورتیں ہمیشہ کھڑی ہی رہتی تھیں, مانو انہیں بیٹھنے کا ادھیکار ہی نہ ہو. سادھارن سا لگتا ہے پر کام کے دوران کچھ دیر بیٹھنے کا یہ ادھیکار جیتنے کے لیے یہ عورتیں 8 سال سے سنگھرش کر رہی تھیں. میں اس چھوٹے سے کمرے میں پی وی جی, جنہوں نے یہ آندولن شروع کیا, اور ان کی جوشیلی عورتوں کی ٹیم سے ملنے آئی ہوں. وی جی پیشے سے درزی ہیں. 10 سال کی عمر میں ہی انہیں اسکول چھوڑنا پڑا تھا. ان کا قد لمبا ہے اور خوب آتم وشواس کے ساتھ بات کرتی ہیں. بہت صاف گوئی سے وہ مجھے سمجھاتی ہیں کہ ان کی جیسی ان پڑھ عورتوں کو اس آندولن کے لیے جٹانا کیوں ضروری تھا. کپڑا ادیوگ میں کام کرنے والی ان عورتوں کو شرم قانون کی جانکاری نہیں ہے, اور اگر کوئی اپنے پتی کو اپنی پرتاڑنا کے بارے میں بتائے تو وہ اسی کو قصوروار مانتے ہیں. انہی وجہوں سے مجھے ان کی آواز بننا پڑا. سرکار کی نیتی بدلنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ عورتوں کے مدوں پر مردوں کی ادھیکشتا والے رسوخدار مزدور سنگھوں کا سمرتھن ملے, پر انہوں نے کہا کہ یہ مانگیں اہم نہیں ہیں. ہم نے لگ بھگ سبھی مزدور سنگھوں سے کہا کہ وہ شوچالے کے ادھیکار جیسے مدوں پر ہمارے ساتھ آئیں. انہوں نے اسے غیر ضروری بتایا اور کہا کہ یہ عورتیں صرف وقت کاٹنے کے لیے نوکری کرتی ہیں. مہیلا کامگاروں کو یہ مزدور سنگھ ایسے نظریے سے دیکھتے ہیں. آخرکار وجی نے اپنا مزدور سنگھ بنایا. وہ عورتوں کے ادھیکاروں کے بارے میں جانکاری چھاپ کر شو روم کے باہر بانٹنے لگے. وجی نے کچھ ہڑتالیں بھی آیوجت کی. انہی سب کے بدولت سرکار نے کہا کہ وہ یہ دستور ختم کر دے گی, پر کچھ خاص نہیں بدلا ہے.
شو روم کے اندر عورتیں مجھ سے بات کرنے سے بالکل منع کر دیتی ہیں. باہر آ کر بھی ریکارڈنگ بند کرنے کی شرط پر بتاتی ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ ان کی نوکری چلی جائے گی, اور وہ اب بھی اپنے مینیجرز سے کام کے دوران کچھ دیر بیٹھنے کے اپنے ادھیکار کی مانگ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی. ہائی مایا,
ہلو,
تھینک یو سو مچ فار کمنگ آل دا وے فرام یور ہوم ٹو میٹ اس.
جب مایا نے یہ ادھیکار مانگا, اس کی نوکری چلی گئی. 4 سال پہلے وہ ساڑی کے ایک پرسدھ شو روم میں کام کرتی تھیں. نوکری تھکاؤ تھی پر ان کا غرور تھی. باقی سیلز ویمن کی طرح انہیں بھی شوچالے کی سہولیت تک نصیب نہیں تھی.
ہمیں پیروں میں درد, ویریکوز وینز, گربھاشیا سمبندی شکایتیں, یورینری انفیکشن جیسی سواستھ سمبندی پریشانیاں ہو رہی تھیں. میں رائٹ ٹو سٹ آندولن کا حصہ اس لیے بنی کیونکہ مجھے لگا کہ اپنے ادھیکاروں کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے.
مایا کو ہمت اس آندولن کی مکھیا وجی سے ملی, پر زیادہ تر عورتوں کے لیے ان کی یہ چھوٹی موٹی تنخواہ اور نوکری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنے کی آزادی بہت قیمتی ہے, جسے وہ خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی. وہیں کیرل ویاپاری سنگھ کے راجیہ سچیو ٹی نذیر الدین کے مطابق سیلز وومن کو بیٹھنے کے کافی موقع دیے جاتے
ہیں.
کیرل میں ہزاروں دکاندار ہیں. اگر ایک یا دو یا کچھ برا برتاؤ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبھی خراب ہیں.
پر ان سیلز وومن کو ان کی مہیلا گراہکوں سے خوب سمرتھن مل رہا ہے.
انہیں بیٹھنے دینا چاہیے, خاص طور پر جب کوئی گراہک نہ ہو, ان کے پاس کچھ خالی وقت ہو.
انہیں یہ ادھیکار اس لیے ملنا چاہیے کیونکہ وہ نوکری تو کرتی ہی ہیں, اس سے پہلے وہ گھر کے سارے کام بھی ختم کرتی ہیں.
راجیہ سرکار کے مطابق انہیں ویاپاریوں کے رویے کے خلاف سیلز وومن سے کئی شکایتیں ملی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ جرمانے کی سزا بھی لے کر آئیں گے, پر جب تک قانون لاگو نہیں ہوتا, کام کے لمبے دن سے گھر لوٹتی سیلز وومن کو अपने अधिकार मिलने के लिए इंतजार करना होगा। दिव्या आर्य, बीबीसी केरल।
और अब खेल समाचार। आदेश कुमार गुप्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी आदेश जी, क्या कहते हैं आज खेल की दुनिया?
जी आदर्श, अगर बात की जाए क्रिकेट की तो सबकी निगाहें लॉर्ड्स पे लगी हैं, जहां आज मैच का चौथा दिन है। हालांकि आज बारिश की वजह से भी काफ़ी कुछ खेल पर असर पड़ा, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी तरफ अगर भारत की बात की जाए तो भारत की स्थिति इस समय बहुत ही नाजुक है। दरअसल भारत को लॉर्ड्स टेस्ट मैच में आज जबकि चौथा ही दिन है, लेकिन पारी की हार से बचने के लिए 289 रनों की ज़रूरत, और उसके जवाब में भारत की शुरुआत दूसरी पारी में एक बार फिर बहुत ही ख़राब रही। और थोड़ी देर पहले चेतेश्वर पुजारा के रूप में भारत का चौथा विकेट 50 रन पर गिर चुका था। चेतेश्वर पुजारा, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, यानी कि ये भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी इसलिए कहलाते थे क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट बैट से खेलते हैं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी की स्टुअर्ट ब्रॉड ने, और 87 गेंदों का सामना करने के बाद आखिरकार चेतेश्वर पुजारा का भी धैर्य डगमगाया, या फिर ये कहे कि तकनीकी खराबी के चलते वो बोल्ड हो गए, और उनकी जगह थोड़ी देर पहले हार्दिक पांड्या ने ली है। लेकिन सबसे ज़्यादा निराश किया मुरली विजय ने, जो पहली पारी में भी खाता नहीं खोल सके थे, और दूसरी पारी में भी जेम्स एंडरसन ने उसी तरह से अपनी स्विंग होती गेंदों से उन्हें लगातार परेशान किए रखा। आखिरकार अजिंक्य रहाणे ने बेरेस्टो के हाथों में कैच दे दिया। दूसरी तरफ केएल राहुल थोड़ा जमते नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें भी जेम्स एंडरसन ने बहुत ही शानदार गेंद पर LBW किया, उनके बल्ले से केवल 10 रन निकले। और अजिंक्य रहाणे, जो कि भारतीय टीम के उपकप्तान हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद दूसरी पारी में वो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर जेनिंग्स के हाथों कैच हुए। अब विकेट पर कप्तान विराट कोहली डटे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो उसने भारत को पहली पारी में केवल 107 रनों पर समेटा, और आज उसने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 396 रन के विशाल स्कोर पर समाप्त घोषित की। क्रिस वॉक्स, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जमाया, वो नाबाद रहे 137 रन बनाकर। जॉनी बेरस्टो ने 93 रन बनाए, जबकि सेंकुरेन ने 40 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 96 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। हार्दिक पांड्या ने 66 रन देकर 3 विकेट लिए। ईशांत शर्मा ने 1 विकेट के लिए 101 रन खर्च किए, लेकिन बहुत उम्मीदों के साथ शामिल किया गया था टीम में कुलदीप यादव को, वो कुछ करिश्मा नहीं दिखा सके। 44 रन उन्होंने खर्च किए, कोई विकेट नहीं मिला, तो आर अश्विन के हाथों भी कोई कामयाबी नहीं मिली, उन्हें 68 रन खर्च करने पड़े, लेकिन फिर भी वो निराश रहे। तो कुल मिलाकर इस तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां भारतीय बल्लेबाजी फ्लॉप रही थी पहले टेस्ट मैच में, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल किया था, लेकिन यहाँ तो कोड़ में खाज वाली हालत हुई कि गेंदबाज भी नाकाम रहे और बल्लेबाज तो नाकाम थे ही। उधर वियतनाम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के अजय जयराम इंडोनेशिया के शेषार हिरेन रुस्तावितो से 21-14, 21-10 से हार गए। यह खिताबी मुकाबला इंडोनेशियन खिलाड़ी के लिए कितना एक तरफा था, इसका पता स्कोर से तो चलता ही है, साथ ही समय से भी। रुस्तावितो ने यह मुकाबला और फाइनल जीतने के लिए महज 28 मिनट का समय लिया। उधर श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 299 रन बनाए थे। दरअसल श्रीलंका ने 8 विकेट खोकर तो पूरे 300 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन थोड़ी देर पहले दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 67 रन था 4 विकेट के नुकसान।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया सांगवान से।
बीबीसी समाचार। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य के नजदीक सैटेलाइट भेजने का मिशन लॉन्च कर दिया है। 1.5 अरब डॉलर की लागत वाले द पार्कर सोलर प्रोब को कैप कैनेवरलिस से अंतरिक्ष में रवाना किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कैस्पियन सागर क्षेत्र के कानूनी दर्जे को लेकर हुए समझौते को मील का पत्थर बताया है। चारों ओर धरती से घिरे इस समुद्र को लेकर हुए समझौते में रूस के अलावा इससे लगे 4 अन्य देश ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान शामिल हैं। अमरीका में कट्टरपंथी समूह और गोरे नस्लवादी आज वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर रैली करेंगे। एक साल पहले वर्जीनिया के शार्लोट्सविले में इन समूहों की रैली में व्यापक हिंसा हुई थी। इथियोपिया के व्यापक सोमाली भाषी क्षेत्र में स्वायत्तता के लिए 2 दशकों से लड़ रहे एक विद्रोही गुट ने एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।